हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। गौरांगा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। अभी सब लोग एक बार पुकारेंगे हाँ जोर से एकदम। सब लोग तैयार हैं? गोपाल,
गोपाल!
नहीं नहीं सब लोग नहीं बोल रहे हैं। गोपाल,
गोपाल!
हे गोपाल! जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा ऐसे नहीं सब लोग एकाग्रता से और हृदय से पुकारिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परीक्षित महाराज ने कितने दिन भागवतम सुना था? केवल 7 दिन सुना था, 7 रात भी सुना था। और जब 5वां दिन आया और समाप्त होने लगा तो वो कैसे थे?
ऐसे
थे क्या ऐसे? और फिर 6वां दिन हुआ तो क्या हुआ? थक गए बेचारे, नींद आने लगी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन। और 7वें दिन में क्या हुआ? बेहोश हो गए। हाँ, ऐसा कभी सुना है आपने? हमारी यात्रा के कौन सा दिन है आज? कौन सा दिन है आज? 7वां दिन है। कितना दिन यात्रा है हमारी? तो जैसे श्रीमद् भागवत के आप आगे आगे अध्याय पढ़ेंगे ना, 10वां फिर 11वां स्कंद पढ़ेंगे, 12वां पढ़ेंगे, तो बार बार आप पूरे भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज का क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं। क्या आप कितने उत्साही हो? इतने दिन बीत चुके हैं, ना खाया है ना पिया है ना सोए हैं, ना कोई वेगों का उत्तर दिया है नैसर्गिक वेगों का, लेकिन क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन एंथुजियाज्म। जैसा समय बीतता है वैसे प्राकृतिक नियमों से उनको थकना चाहिए, लेकिन जैसे समय बीत रहा है वैसे उनका उत्साह और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। ये हमारे लिए प्रेरणा है। और वैसे भी गुरुदेव देख रहे हैं आप, उनका उत्साह भी बढ़ रहा है कि नहीं? हर दिन, हर दिन नए उत्साह से आते हैं वो, नहीं कहानियां, हर एक डिटेल को नोट्स बना के पढ़कर दिन भर आते हैं और तीन तीन चार चार घंटा बोलते हैं। क्या उम्र कितनी उनकी? 68 ईयर्स।
जय श्री राधे।
इतनी उम्र में इतने उत्साह से वो हम सब लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। हमको कम से कम श्रवण के लिए उत्साह होना चाहिए, है ना? और हमने एक बार शुरू शुरू में जब आए थे हरे कृष्णा में, तो सुना था कि अगर समझो कथा में नहीं जाते ना, तो हमको डांस करना चाहिए उठ के और फिर बैठना चाहिए वापस। अगर इतनी नींद आती होगी कि बैठे बैठे हम लोग गिर रहे हैं जमीन पर, तो कहते हैं कि उठ के हमको डांस करना चाहिए। हरि बोल। हम लोग हॉस्पिटल में ऐसा ही बताते लोगों को कि आप लोगों को तनख्वाह कितने घंटे की मिलती है? 8 घंटे की। पहले घंटे में कितनी मिलती है? उतनी आखिरी घंटे में मिलती है। तो पहले घंटे में जितने फ्रेश और उत्साही रहते हैं, उतना ही आखिरी घंटे में भी फ्रेश और उत्साही रहना चाहिए, क्योंकि पगार तो हमसे नहीं लेते ना। उसी तरह से यात्रा के पहले घंटे से 90 दिन के यात्रा के आखिरी घंटे तक हमको अपना उत्साह जो है ना वो बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारी जो झोली है वो पूरी खचाखच भर जाए। वो झोली में क्या क्या भरना चाहेंगे आप? आने वाले सारे समय के लिए उत्साह भरना चाहेंगे। भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत कथा, इनके लिए अथाह रुचि भरना चाहेंगे, सेवा भाव भरना चाहेंगे, लौल्य यानी कि आतुरता भरेंगे, ईगरनेस। और ये सब कम से कम 1 साल तक, क्या कहते हैं उसको, काफी होना चाहिए, ताकि अगले साल की यात्रा में फिर भरेंगे उसको, और जीवन के अंत तक ऐसा ही झोले हमारा भरते रहना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि ये धाम जो है ना, ये साक्षात भगवान है, और भगवान से भी अधिक करुणामयी ये धाम है भगवान का। 4 चीजें भगवान से अधिक करुणामयी होती है, एक है भगवान नाम, एक है भगवान की कथा, और एक है भगवान का रूप, और एक है भगवान का धाम, नाम रूप लीला धाम। और ये चारों माध्यमों से बड़ी ही करुणा से वो हमारे लिए अपने आप को भगवान प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उनको ग्रहण करने समय हमको कैसे भी करके, ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेश, ये भगवान के लिए अपना मन जो है वो निवेश यानी क्या, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने मन का। तो आइए, आप सब लोगों का श्री जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में स्वागत है। बोलो बोलो हरि बोल। हाँ, आपका स्वागत कर रहा हूं, मेरा नहीं कर रहा हूं। तो इसके पहले आप लोग वहां पर जाके आए ना, नरेंद्र सरोवर दर्शन किया ना आपने? इतना सुंदर और इतना विशाल कुंड है वो। उसके 2 प्रकार के मत प्रवाह है। एक मत प्रवाह ऐसा है कि राजा इंद्रदुम्न ने उसको स्वयं बनाया था, जगन्नाथ भगवान के आनंद के लिए, जगन्नाथ भगवान के नौका विहार के लिए, चंदन यात्रा के लिए, और ओवरऑल भगवान के सुख के लिए उसको बनाया था। और दूसरा मत प्रवाह यह है कि कुछ साल 400-500 साल पहले उस समय के राजा ने इसको बनवाया था। और पहले मत प्रवाह में कहा गया कि जो सरोवर इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया था उसको उस समय के राजा ने उसको जीर्णोद्धार करके बहुत बढ़िया बनाया, उसका संवर्धन किया उसका। कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐतिहासिक मतभेद से, लीला तो भगवान की हो ही रही वहां पर। तो नरेंद्र सरोवर ये कहते हैं कि 10 से भी अधिक एकड़ में बना हुआ है, बहुत गहरा है वो, उसके अंदर मंदिर बने हुए हैं। और साल में जब चंदन यात्रा होती है, चंदन यात्रा कब होती है बताइए, बताइए बताइए कब होती है? अक्षय तृतीया को शुरू होती है। और वो कभी होती है? वैशाख शुद्ध तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन से कितने दिन चंदन यात्रा होती है? जोर से बोलिए। लेकिन यहां पर 42 डेज के लिए होती है, 42 डेज। 21 दिन की चंदन यात्रा नरेंद्र सरोवर में होती है, और 21 दिन की चंद्रन यात्रा उसके बाद वाली, शोना कुआं नाम का एक कौंड है, पौंड वहां पर, स्नान कुंड कह सकते हैं आप, वो जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर है। 21 दिन की चंदन यात्रा यहां होने के पश्चात आगे वाले 21 दिन की चंदन यात्रा वहां पर होती है। उसमें कहते हैं कि भगवान अपने श्रीदेवी और भूदेवी इन दोनों के साथ अपने अर्च विग्रह का जो उत्सव मूर्ति है मदन मोहन जी, इनके साथ में वहां से निकलते हैं और भूदेवी श्रीदेवी को और मदन मोहन जी इन विग्रहों को चंदन के जल में पहले स्नान कराते हैं वहां से, फिर फूलों से सुगंधित ठंडक वाले सुगंधित फूलों से उनको सुशोभित करके एक पालकी में बिठा के लेके आते हैं। दूसरी पालकी में दूसरे उनके विग्रह उत्सव मूर्ति राम गोविंद जी दूसरे पालकी में रहते हैं और पांच पालकियां होती है वो, उसमें कौन बैठते हैं, पंचशिव। ये हमारा जो जगन्नाथपुरी धाम है ना, इसमें पंचशिव, अष्ट शंभू और पंच महातीर्थ बहुत मशहूर है। पंचशिव और पंच तीर्थ, इसमें दर्शन और स्नान करने के बिना जगन्नाथ जी की यात्रा पूरी नहीं होती, ऐसे शास्त्र में लिखा है। तो वो पंचशिव कौन है, कामेश्वर महादेव, लोकनाथ महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, यमेश्वर महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव। पांच पांडवों ने अपने वनवास काल में जगन्नाथ जी से बहुत तीव्र प्रार्थना की थी संकटों का निवारण करने के लिए, तो उनके ही स्मृति में ये पांच शिव जो है उनको स्थापन किया गया था और उनको नाम भी पांडवों के दिए गए। जैसे यमेश्वर महादेव जो है उनको युधिष्ठिर मानते हैं, नीलकंठेश्वर महादेव को सहदेव मानते हैं। इस प्रकार से ये पंच शिव जो है बहुत ही भगवान के जगन्नाथपुरी के बहुत सारी लीला में भाग लेते हैं, अपनी जगह से वहां पर यात्रा करते हैं और भगवान भी बहुत ही अद्भुत हैं। अपने लक्ष्मी नारायण उत्सव मूर्ति के रूप में साल में उनका एक बार विवाह होता है। वो जो लक्ष्मी देवी है रुक्मिणी के भाव में बिमला देवी के मंदिर में जाकर रहती है और जगन्नाथ जी अपने मदन मोहन जी विग्रह के रूप में जाकर वहां पर रुक्मिणी का हरण करते हैं और उनका विवाह होता है। और विवाह होने के बाद दोनों जुगल जोड़ी यमेश्वर महादेव में शिव जी को मिलने के लिए जाते हैं। साल में एक बार वो दोनों मार्कंडेश्वर सरोवर में स्नान करने के लिए भी जाते हैं। इस तरह से शंकर भगवान और जगन्नाथ जी भगवान का बहुत ही प्रेम का आदान प्रदान और लीला यहाँ पर है। तो मदन मोहन जी श्रीदेवी भूदेवी एक पालकी पर, राम गोविंद जी दूसरे पालकी पर और पांच शिवा पांच पालकी पर अपने अपने मंदिर से आके वहां पर मिल जाते हैं। कि वहां कहां पर, सिंह द्वार के सामने, और सिंह द्वार से लेकर जगन्नाथ वल्लभ नरेंद्र सरोवर तक सारा रास्ता जो है ना वो पंडाल से पंडाल बनाते हैं, बोलते ना कैनोपी, टेंट डालते हैं उसके ऊपर और वहां से फिर पालकी निकलती है और जगह जगह पर रुक रुक के ये सारी पालकियां भोग आरती और सेवा स्वीकार करते हैं और फिर वो वहां से नरेंद्र सरोवर में प्रवेश करते हैं। और कहा गया कि दो बोट होती है, उसमें मदन मोहन जी श्रीदेवी भूदेवी जो एक पालकी में है और राम गोविंद जो दूसरे पालकी में है, दोनों एक बोट में सवार हो जाते हैं और दूसरे बोट में पांचों शिव जो है वो सवार हो जाते हैं और फिर नौका विहार आरंभ होता है। इतना सुंदर उत्सव है कि नौका विहार में भगवान शाम के समय पे आते हैं और कहते हैं कि रात को 1 बजे तक भगवान का नौका विहार चलता है और सब भक्त लोग क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे मृदंग, बहुत सारे करताल, बहुत सारी भेरियां, बहुत सारे शंख बजाते हैं और पताका, झंडे, चामर लेके आते हैं हजारों की संख्या में और बड़ी धूमधाम से गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए, भगवान को रिझाते हुए बड़ी अच्छे जोरदार जुलूस में भगवान को यहाँ पर लेके आते हैं। तो ये नौका विहार का उत्सव भगवान को आनंद देने के लिए होता है, भगवान को चंदन का लेप भी होता है, इन सभी भगवानों को जितने भी पालकी में आए हैं उनको चंदन का लेप होता है और फिर भगवान भक्तों का गीत गाते हुए, भक्तों का गीत सुनते हुए, भक्त उनको रिझाते हुए बहुत घंटे तक नरेंद्र सरोवर में नौका विहार करते हैं। उसके बाद में नरेंद्र सरोवर में आपने कल महाराज से विस्तार रूप में सुना इसलिए हम विस्तार में नहीं बताएंगे, लेकिन नरेंद्र सरोवर में बंगाल के भक्त लोग आकर वहां रुके थे। जब भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने बंगाली भक्त वैष्णवों को जगन्नाथपुरी में बुलाया रथ यात्रा के उपलक्ष्य में, तो वो सब लोगों को उन्होंने नरेंद्र सरोवर पर स्वागत किया था। ऐसे कहा कि चैतन्य महाप्रभु के पार्टी में, मतलब स्वागत करने वाले पार्टी में नित्यानंद प्रभु, हाँ, गदाधर पंडित, ब्रह्मानंद भारती, रूप सनातन गोस्वामी, गोविंदा, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर जी, रामानंद राय जी, ये सब लोग यहाँ पर स्वागत करने के वाले पार्टी में थे। वो पहले गए लेकिन भगवान को रहा नहीं गया, भगवान पीछे बहुत हवा की गति से भाग के गए। और जिनका स्वागत किया जा रहा है उन पार्टी में कौन थे? नेता रूप में अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य थे, श्रीवास पंडित थे, पुंडरीक विद्यानिधि आदि हजारों वैष्णव थे। जैसे महाप्रभु वहां पर आए, महाप्रभु ने कितने सारे किलो भर के चंदन की पेस्ट मंगाई, हर एक वैष्णव के लिए फूलों की माला मंगाई। और कहते हैं कि जैसे महाप्रभु ने दर्शन किया तो भक्तों को देखकर महाप्रभु बहुत गदगद हो गए, उनका कंठ जो है गदगद हो गया, शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से अश्रु आए, और उन्हें हर एक भक्त को गले लगाया, हर एक भक्त को गले लगाया, हर एक भक्त को अपने हाथ से चंदन लगाया, हर एक अपने भक्त को अपने हाथ से माला पहनाई उन्होंने। और कैसे ये चंदन माला और स्वागत जो है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनके हजारों करोड़ों गुना उनकी जो भावना थी प्रेम की, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जिस प्रकार से, जिस भावना से, जिस प्रेम से उन्होंने उनका स्वागत किया, सब लोग रो रहे आनंद से महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके। और कहते कि महाप्रभु का दर्शन हर एक भक्त ने उनके चरणों को ऐसा ना, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्लैस्प, व्हाट यू कॉल इन हिंदी, ऐसा कस के पकड़ा हर हर भक्त ने दोनों चरणों को, और क्या प्रार्थना किया कि हे भगवान, हम चाहे, क्या कहते हैं ना, वो मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, चाहे जन्म हो ना हो, और जन्म हो मनुष्य का हो, कीड़े मकोड़े का हो, पंछी का हो, जानवर का हो, हर जन्म में हमारी एक ही इच्छा है, भगवान हमको एक वरदान दीजिए आप कि आपके चरणों पर ही हमारी नेत्र दृष्टि जो है वो बनी रहे। औरंग महाप्रभु की, सब लोगों ने ऐसे हृदय से रो रो के भगवान से प्रार्थना किया, हृदय पूर्वक। हम भी प्रार्थना करेंगे जगन्नाथ भगवान को और गौरांग महाप्रभु को कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों पर हमारी दृष्टि बनी रहे। बोलिए हरि बोल, जय हो। आपकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से गौरांग दर्शन आनंद मत्तः, भगवान का दर्शन करके सब भक्त लोग बड़े आनंदित हो गए। और वहां से फिर रथ यात्रा का सुंदर वर्णन आपने कल सुनाई है। अभी बहुत साल भगवान ने यहां पर नौका विहार में भाग लिया। 18 साल के अंतलीला में पहले ही कुछ साल वो प्रकट अवस्था में थे, यानी कि पहले कुछ साल वो रथ यात्रा में आए, दर्शन करने आए वगैरह। उसके आगे वाले साल वो एकांत में बहुत ही उत्कट और अति उत्कट भावना में, गंभीरा में रहे। वहां से भी बाहर आते थे लेकिन रथ यात्रा जैसे पब्लिक इवेंट में उन्होंने सहभाग नहीं लिया, क्योंकि उनका जो अति उत्कट राधा रानी का भाव करने, भाव को अनुभव करने का जो उद्देश्य था वो उन्होंने उसके आगे वाले सालों में सफल किया। तो एक साल जब नौका विहार हो रहा था और ये सात जो पालकियां पहुंच गई और सात पालकियां पहुंच गई और उन्होंने बोट में प्रवेश किया, तो चैतन्य महाप्रभु एकदम भाव में आ गए, इतने आनंदित हो गए। पहले तो शांति से वो नरेंद्र सरोवर के किनारे में बैठ के दर्शन कर रहे थे, भक्त लोग उनके साथ में थे, सब लोग कीर्तन कर रहे थे। अचानक चैतन्य महाप्रभु गोकुल राज गोपाल भाव में आए, एकदम बाल भाव में आए वृंदावन के, और सबसे पहले छलांग लगाई नरेंद्र सरोवर में उन्होंने। अभी पता है ना क्या होता है, जब भगवान छलांग लगाते तो भक्त लोग ऐसे बैठे रहेंगे क्या? भक्त लोग भी सब धड़ाधड़ छलांग लगाते हैं उनके पीछे, और सब इतने बड़े बड़े भक्त लोग जो हैं, इतने पंडित विद्वान और सीनियर डिवोटीज थे, कुछ कुछ तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, कुछ कुछ ईश्वरपुरी के शिष्य थे, ऐसे महान महान भक्त लोग, बड़े बुजुर्ग भी थे, शरीर की अवस्था से वृद्ध थे, ऐसे सारे भक्त लोग कूद गए नरेंद्र सरोवर में। और गौरांग महाप्रभु ऐसे भाव में आ गए कि उन्होंने सबके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया जल के लिए, और क्या बोल रहे थे वो लोग, कया कया, बोलो कया कया, ऐसे बोलते हुए उन्होंने एक दूसरे को पानी डालना शुरू किया। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, पुंडरीक विद्यानिधि, स्वरूप दामोदर, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे सारे भक्त जो है वो बच्चों की तरह एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगे। और बहुत घंटे तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को जल क्रीड़ा का आनंद दिया। ये भी नरेंद्र सरोवर में हुआ है। इस तरह से नर्मदा सरोवर जो है वो आनंद का स्थल है। अभी चंदन चंदन यात्रा जो है उसको यहां पर चंदन लागे कहते हैं। वैसे चंदन लागे रोज भी होती है, कार्तिक महीने में विशेष होती है, और 21 दिन चंदन यात्रा में भी चंदन यात्रा होती है। अभी रोज उनको रात को 11:30 बजे वो होता है बड़ो श्रृंगार वेश, बहुत विशेष वेश है भगवान का। वैसे जगन्नाथ भगवान श्रृंगार करने में बहुत निपुण है, उनके अलग अलग प्रकार के वेश होते हैं, कम से कम 25 प्रकार के वेशों का वर्णन दिया है। और कुछ वेश ऐसे कुछ सालों में एक बार होते हैं, कुछ एक साल में एक बार होते हैं, कुछ हर महीने में होते हैं, कुछ हर दिन होते हैं। ऐसे दिन में 4-5 श्रृंगार करते हो, तो बड़ो श्रृंगार वेश उनका बहुत विशेष है। उस श्रृंगार में वो रात को उनको मैंने दर्शन किया 11:30 बजे, लोग ऐसे सीढ़ियों पर चढ़कर उनके सर पे चंदन का लेप करते, और वो चंदन का लेप क्यों करते उसके एक कारण दिया गया है कि वो दिन भर बड़ी बड़ी आंखों से केवल दिन में 3 घंटा विश्राम करते हैं, हाँ, और कार्तिक और रथ यात्रा के समय तो 1 घंटा भी नहीं करते विश्राम, नेत्रोत्सव में तो सोते ही नहीं है। ऐसे बड़े बड़े नेत्रों से दिन भर उतने ही बढ़ते हुए प्रेम से अपने भक्तों को देखते रहते हैं, तो उनको सर में थोड़ा सा दर्द होता है, सर भी गर्म होता है उनका, भक्त लोग बड़े प्रेम से उनको चंदन लगाते हैं, भगवान को रिझाते हैं, हाँ, भगवान भी अपना प्रेम भक्तों के लिए दिखाते हैं, भक्त भी अपना प्रेम भगवान के लिए दिखाते हैं। तो वो चंदन लगाते हैं और फिर उनको गीत गोविंद सुनाते हैं। अभी गीत गोविंद के बाद निकले तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, भगवान को गीत गोविंद कितना प्रिय है। एक तो सबसे पहले जयदेव जी को 8वीं सेंचुरी में भगवान ने दर्शन देकर आदेश दिया कि आप लिखो। सबसे पहले जयदेव जी जगन्नाथपुरी में थे, यहाँ पर ब्रह्मचारी आजन्म ब्रह्मचारी बनने के लिए आए थे, और एक झोपड़ी में रहते थे, तो निश्चय किया था कि मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन बड़े ब्राह्मण थे जगन्नाथ जी के भक्त, उनके पास एक कन्या थी, और वो रोज जाकर जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते थे, इसके लिए कोई अच्छा वर ढूंढो, इसके लिए अच्छा वर ढूंढो, मेरी पद्मावती के लिए अच्छा वर ढूंढो। तो जगन्नाथ ने एक स्वप्न दिया उनको, बोले मेरा एक भक्त आया है नवद्वीप से, कल अपनी कन्या को लेकर सुबह उनके पास जाना और बोलना कि मेरी कन्या मैं आपको विवाह में देने के लिए आया हूँ। और उधर स्वप्न दिया जयदेव जी को और बोला कि कल एक ब्राह्मण आएंगे अपनी कन्या को लेकर, उनकी कन्या के साथ विवाह करना। तो जयदेव जी बोलते मैं तो यहाँ पर ब्रह्मचारी बनने के लिए आया था, अपना जीवन समर्पित करने के लिए आया था, लेकिन ये मेरी आज्ञा आपके लिए। तो फिर वो आज्ञा को सर आंखों पर रखते हैं, अगले दिन वैसे ही होता है जैसे भगवान ने कहा है, ब्राह्मण देवता आते हैं और अपनी कन्या को वहां पर अर्पण करते हैं उनको, और फिर भगवान उनको आदेश देते हैं कि आप नवद्वीप जाओ। और नवद्वीप जाकर उन्होंने दशावतार स्तोत्र और गीत गोविंद का भगवान की इच्छा से संकलन किया, बहुत सुंदर सुंदर कहानी है। और उनको ये वरदान भी दिया था कि आपका गीत गोविंद ये सबसे प्रिय होगा। तो ये गीत गोविंद सुनने के लिए जगन्नाथ जी इतने आतुर रहते हैं कि एक कन्या जो है यहाँ पर अपने बगीचे में, बैंगन का बगीचा है उसका, वो वहां पर बैंगन तोड़ते तोड़ते बहुत ही सुंदर और प्रेम से गा रही है गीत गोविंद। तो जैसे ही वो गाने लगते ना, वैसे जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़कर भाग के आते हैं उस बगीचे में, और उस बगीचे में बहुत सारे कांटों के झाड़ है, आने के रास्ते में भी है, तो ऐसे गति से आतुर होकर वो भागते हैं कि सारे उनके वस्त्र फट जाते हैं। और वो बैंगन का आपने देखा है कभी, बैंगन का पेड़ देखा है आपने, उसको भी ऐसे हल्के हल्के नोकदार नहीं होते लेकिन बहुत काटे काटे जैसे होते हैं, उधर भी छुप छुप के वो सुन रहे थे, उसके पीछे 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 जाते हुए सारे वस्त्र फट गए। और फिर सुबह जब दर्शन खुलने का समय आया तो देखते हैं तो क्या सारे वस्त्र फटे हुए। तो राजा को रिपोर्ट किया, राजा ने कहा देखो क्या हुआ। राजा बहुत दुखी हो गया, राजा मंदिर में भाग भाग के आए, जगन्नाथ जी के चरणों में गिर गए, पता है माफी चाहता हूँ, पता है मेरे सेवकों ने कुछ गलती किया होगा, हमारी तरफ से व्यवस्था में कुछ गलती हो गई होगी, हम क्षमा कर देना। से बहुत रोए और दिन भर वहीं रहे, और वहीं पर रात को झपकी लगी उनको। तो जगन्नाथ जी स्वप्न पर आए, उन्होंने बोला कि तुम्हारे में से किसी का भी इसमें दोष नहीं है, मैं वो जो कन्या थी उसका गीत गोविंद सुनने के लिए भाग कर जंगल में गया था, इसलिए मेरे सारे वस्त्र फट गए। मेरी ये इच्छा है कि मुझे उस कन्या से रोज गीत गोविंद सुनना है। तो जगन्नाथ के द्वारा बताए हुए निर्देश के अनुसार सब राजा अपने सैनिकों को भेज दिए और वो कन्या को ढूंढ निकाला उन्होंने। और भगवान ने ऐसा भी आदेश दिया था कि उसके लिए रहने की व्यवस्था करो, आजीवन रहने की और भोजन की व्यवस्था करो, पूरा व्यवस्था मेंटेनेंस की करो उसकी, और फिर वो रात को मेरे लिए गीत गोविंद गाएगी। बड़े इत्मीनान से पालके में बिठाकर भगवान ने उनको, राजा ने उनको जगन्नाथपुरी में सेटल किया, बड़ा घर दिया, अच्छा खाने पीने की व्यवस्था किया, नौकर चाकर दिए, और रोज रात को फिर 11:30 के आसपास वो गाने लगी, अपने जीवन के अंत तक वो रोज गाने लगी। ये विषय कहां से निकला था? चंदन लागी होने के बाद में भगवान आनंद लेते हैं बहुत समय के लिए, फिर वो गुजर गई, फिर आज तक 11:30 को रात को उसके जो वंशज है वो जाने के बाद उनके पुत्रों ने गाना शुरू किया। आज पता नहीं कितनी पीढ़ियां हो गई, लेकिन उनके ही वंश में रात को उनके ही परिवार की तरफ से गीत गोविंद गाया जाता है और भगवान सुनते हैं। भगवान को गीत गोविंद इतना पसंद है कि उन्होंने एक बार जयदेव जी को आदेश दिया, जयदेव जी को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया, राधा माधव ने भी दर्शन दिया उधर नवद्वीप में, और कहा कि अभी आप जाओ जगन्नाथपुरी। तो बड़े दुखी हो गए वो कि हमने नवद्वीप में क्या अपराध किया, क्या नवद्वीप से आप हमको जाने को कह रहे हैं। तो भगवान कहते कि मेरा ही स्वरूप वहां पर है, आप जानते हो, आप वहां पहले भी थे, तो जगन्नाथ जी के रूप में आपकी मैं सेवा लेना चाहता हूँ, आपसे गीत गोविंद सुनना चाहता हूँ। तो बड़े दुखी होकर पीछे पीछे बार बार देखते देखते वो फिर नवद्वीप छोड़कर जगन्नाथपुरी आ गए, फिर बस गए। फिर जगन्नाथ जी ने उनको स्वप्न दिया और कहा कि वो तुम्हारा गीत गोविंद जो है वो मुझे इतना पसंद है कि मुझे उसी को एक वस्त्र पर बुन के दे दो, मतलब टेलर के पास जाकर एक सिल्क का वस्त्र लेकर उसमें गीत गोविंद छापो पूरा उड़िया भाषा में। तो टेलर के पास गए और टेलर ने कहा कि ठीक है, तो बढ़िया सिल्क वस्त्र लिया और फिर गीत गोविंद जी तो ऐसे उस समय कुछ लिखे भी लिखित में नहीं था, वो सब तो जयदेव जी के दिमाग में था। तो जयदेव जी बैठे और टेलर सुनने लगा, वो सुनाने लगे और वो उसमें छपाई करने लगे। अभी हम कैसे हैं, हमारा कुछ काम होता है, हम जॉब की तरह करते हैं, लेकिन जब भी जयदेव जी गीत गोविंद गाते हैं तो बड़े भाव से गाते हैं। तो क्या हुआ, बीच गाते गाते इतने भाव विभोर हो गए, बेहोश हो गए उधर। तो टेलर को परेशानी हो गई, अभी क्या करें, अभी आगे का कौन कहेगा। उतने में एक लड़का भाग भाग के आया, छोटा सा बहुत सुंदर लड़का, और कहते कि हमारे बड़े भाई हैं ये और इनका थोड़ा बीमारी है, इनको बार बार ऐसे होता है इनको, तो आप चिंता मत करना, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे, तब तक मैं सुना देता हूँ आपको। तो वो लड़के ने पूरा आगे का गीत गोविंद सुना दिया और गीत गोविंद पूरा हुआ तो जयदेव जी होश में आए और उसको पूर्ण करते ही लड़का गायब हो गया। तो जयदेव जी ने कहा आधा हो गया ना, आधा सुना तो हूँ। नहीं नहीं, एक लड़का आया था, वो कहता कि हम आपका छोटा भाई है। तो मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। तो जयदेव जी समझ गए कि जगन्नाथ जी स्वयं आकर उन्होंने आधा जो है वो गीत गोविंद टेलर को सुनाया और वो वस्त्र पूरा तैयार हुआ। किसी को नाम है, उस वस्त्र का नाम क्या है, किसी को पता है? उसका नाम है गीत गोविंद खंडुआ। वो रोज रात को जगन्नाथ जी के सर पर फेटा के रूप में बांधते हैं, चंदन लगाते हैं, ये वस्त्र बांधते हैं और फिर उस अवस्था में जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनते हैं। एनीवेज, मुझे ऐसा अचानक याद आया, वो बहुत सुंदर कथा है। अभी हम लोग नौका विहार करके अभी हम जगन्नाथ वल्लभ मंदिर में आए, जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में आए। जगन्नाथ वल्लभ बगीचा इतना भगवान को प्रिय है कि ये केवल भगवान के लिए, आनंद के लिए ही बनाया, जैसे नौका विहार का वहां पर व्यवस्था किया है। यहाँ का वन जो है अभी इतना हमारी दृष्टि के लिए इतना दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन यहाँ का वन जो है बहुत अधिक सुगंधित फूलों से भरा हुआ है, घने जंगल से भरा हुआ है, बहुत सुंदर शीतल मंद सुगंधित हवा यहाँ बहती है, यहाँ पर चंद्रमा अपना शीतल किरण छोड़ती है, ऐसा जैसे वृंदावन के वन होते हैं ना, वैसे सातों ऋतु, छह ऋतु जो है वो एक ही साथ अपने सर्वोत्कृष्ट शक्ति के साथ में भगवान को आनंद देने के लिए वातावरण निर्माण करते हैं, जब चाहे वो वातावरण निर्माण करते हैं, जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसे। तो वैसा वातावरण यहाँ पर है, इसलिए बहुत दिव्य स्थान है ये। ये वृंदावन से अभिन्न है, क्योंकि वृंदावन में जैसे छह ऋतु मिलकर भगवान की सेवा में उत्साह से भाग लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी छह सारे ऋतु जो है भगवान के आनंद के लिए भाग लेते हैं। तो सबसे पहली कथा, यहाँ पर राजा प्रताप रुद्र को भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई, वो भी लंबी कथा आपने सुनी कि बालागंडी में जब ही रथ रुका भगवान को भोग लगाने के लिए, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ विश्राम करने के लिए आए, और फिर यहाँ पर राजा प्रताप रुद्र जो है सूती वस्त्र पहनकर आए थे, सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेश के अनुसार। कई दिन से सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय और बहुत सारे भक्त लगातार एक एक करके चैतन्य महाप्रभु को बार बार विनती कर रहे थे, बार बार महाप्रभु चैतन्य उनकी विनतियों को ठुकरा रहे थे, लेकिन उन्होंने भक्तों की सेवा किया। जब बंगाली भक्त आए तो सब लोगों को उन्होंने रहने का व्यवस्था किया, भोजन की व्यवस्था की, हरिदास ठाकुर के लिए व्यवस्था की, चैतन्य महाप्रभु के लिए व्यवस्था की, रामानंद राय के लिए उन्होंने कहा कि तुम इतने भाग्यवान हो कि मैं तुम्हारा राजा हूं, मतलब तुम्हारी रिपोर्टिंग अथॉरिटी हूं, लेकिन तुम्हें चैतन्य महाप्रभु ने अपने साथ चलने के लिए कहा है। तुम इस्तीफा देने के लिए आए हो, लेकिन आपको इस्तीफा दे दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको दुगनी सैलरी में आजीवन रखता हूं बिना काम के, आप रहो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहो। ये सुनकर महाप्रभु का दिल बहुत ही सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद में रथ यात्रा हुई, उसमें सातों ग्रुप में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन केवल दो तीन लोगों ने किया, उसमें प्रताप रुद्र महाराज भी थे, और प्रताप रुद्र को भी चैतन्य महाप्रभु की पिचकारी, अश्रुओं की वर्षा हुआ उनके ऊपर। और उस समय जब वो आराम करने के लिए आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको कहा कि जाओ आराम करो, उनके पीछे पीछे जाओ, और खास करके कहा था कि रथ यात्रा में कोई राज वस्त्र नहीं पहनना, सूती वस्त्र पहनना। उसके पहले जो झाड़ू लगाया था उन्होंने वो देखकर महाप्रभु का हृदय पिघल गया था। फिर यहां पर आके चरण दबाते हुए उन्होंने सुंदर गोपी गीत सुनाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। बड़े ही प्रेम से, भाव से, जिस भाव से गोपियां भगवान के लिए गा रही थी, बड़े ही प्रेम से उन्होंने गायन किया इसका। बहुत सारे श्लोक है उसके आगे, और उसके आगे फिर श्लोक आता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविवीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरी वृण्णंती ते भूरी दाजनहा। ये श्लोक बहुत श्लोकों के बाद जब आया और इस प्रकार से राजा प्रताप रुद्र ने उसको गाया, उस समय चैतन्य महाप्रभु तो आंख बंद करके सुन रहे थे, वैसे ही भाव में थे, वो प्रेम भाव में थे, अष्ट विकार के भाव में थे, मग्न थे भगवान के विचार में और प्रेम में। उसमें वो गीत सुनाया गया तो और उनका भाव जो उद्दीपित हो गया, तो झट से उठे और उन्होंने गले लगाया और भूरिदा भूरिदा कहने लगे। भूरिदा का मतलब क्या है? वही दयालु, हाँ, परम कल्याणकारी, परम दयालु जीव, जो संत हैं, जो भगवान की कथा का वितरण करते हैं, जो भगवान की कथा, भगवान नाम, भगवान का संग, सेवा के माध्यम से जन सामान्य को देते हैं, उनको भूरिदा कहते हैं। द मोस्ट मिनिफिसेंट पीपल, सबसे दयालु और सबसे दानी, जो भगवान की कथा का दान देते हैं लोगों को। भूरिदा भूरिदा करके उठे और गले लगाया, पूछा कौन हो आप? तो सबसे जो हमारी वास्तविक पहचान है, उस रूप से उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं आपके दासों का दास हूं, मैं भक्तों का दास हूं। ये देखकर और प्रसन्न हो गए वो, और पूरी अपनी हृदय का जो प्रेम है वो प्रताप रुद्र के हृदय में बसा दिया उन्होंने, पूरी कृपा कर दी। एक तरह से बाह्य दृष्टि से उनको वो नकार रहे थे बार बार, लेकिन प्रताप रुद्र का हृदय का भाव वो पूर्ण तरह जानते थे। और आखिर तक चैतन्य महाप्रभु ने ना उनको पूछा और ना प्रताप रुद्र ने उनको बताया कि मैं राजा प्रताप रुद्र हूं। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन प्रताप रुद्र ने जानबूझकर उनको ये नहीं बताया कि मैं राजा हूं। तो कहने की बात यह है कि न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगतीश कामयी। ये सारी जो चीजें हैं वो सब नश्वर हैं। आज कोई राजा है तो कल रंक हो जाएगा, युद्ध में कोई हरा देगा तो भिखारी बन जाएगा, बंदी बनाकर ले जाएंगे उसको। कितने हमारे इतिहास में कहानी है ऐसे। आज अगर कोई ऐश्वर्य है तो कल वो गरीब बन सकता है, कीर्ति है तो कीर्ति नष्ट हो सकती है, अपकीर्ति हो सकती है। अगर आरोग्य है तो कल वो अनारोग्य रोग हो जाएगा आपको। अब जीवन है बहुत गौरवशाली तो कल मृत्यु में रूपांतर हो जाएगा उसका, कभी भी हो सकता है। इसलिए इस भौतिक जीवन में जो हम प्राप्त करते हैं उस पर गर्व करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो समय इतना प्रभावी है कि कभी भी हमसे उनमें से कोई भी वस्तु जब चाहे छीन सकते हैं, और जीवन भी हमसे समय छीन सकता है। भगवान काल के रूप में सब कुछ छीनते हैं और कभी भी छीन सकते हैं। इसलिए उन चीजों पर उतना गर्व और विश्वास और श्रद्धा रखनी नहीं चाहिए, उनका आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए, आश्रय केवल भगवान का ग्रहण करना चाहिए। सहारा लिया था जिस जिसका हमने, वो सब डूबते रहे भंवर में बिचारे। वो सब डूबते रहे भंवर में बेचारे। जिन जिन का हमने सहारा लिया है, प्रियजनों का, आप्तजनों का, ऑफिशियली अनऑफिशियली, वो सब समय के भंवर में डूबते जाते हैं। और केवल भगवान नाम, भगवान की सेवा, भगवान की स्मृति, भगवान की आसक्ति और प्रेम, यही हमारे साथ रहता है। काल हमें हमसे इन चीजों को छीन नहीं सकता है। इसलिए काल हमसे जो छीन नहीं सकता है उसी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उसी में मन लगाना चाहिए और वही संपत्ति इकट्ठा करने में हमारा समय हमको लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब लीला हुई तो बालागंडी में जो भगवान को भोग लगाया गया उसका महाप्रसाद वहां से आया, तो चैतन्य महाप्रभु ने वो स्वीकार किया और सबके लिए पत्तल लगाए महाप्रभु चैतन्य ने, और सबको परोसने लगे। हजारों भक्त थे वहां पर, लेकिन सब लोग कहने लगे कि आप जब तक नहीं पाएंगे तब तक हम नहीं पाएंगे। तो सब लोग रुके हुए हैं, सबको परोसा गया है, महाप्रभु ने स्वयं परोसा उनको प्रसाद। फिर महाप्रभु भी बैठ गए और सब लोगों ने आंखों में अश्रु लेकर एक एक व्यंजन का आस्वादन लिया और आकंठ पुरिया भोजन किया उन्होंने। और उसके बाद आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु यहां से गए तो रथ रुका हुआ था, उन्होंने अपना सर लगाकर रथ को आरंभ किया। फिर जगन्नाथ वल्लभ, ये जो बगीचा है उनका बहुत प्रिय बगीचा है, यहाँ पर जगन्नाथ भगवान राम और कृष्ण इस उत्सव मूर्ति के रूप में गाय को दोहन करने के लिए आते हैं। हर एक की तिथि है, जैसे कि मकर संक्रांति के 2 दिन पहले यहाँ पर राम और कृष्ण उत्सव मूर्ति के रूप में जगन्नाथ बलदेव गाय का दोहन करने के लिए आते हैं। उसके बाद जगन्नाथ जी यहाँ पर शिकार खेलने आते हैं, उनका भी यहाँ पर लीला होता है। और एक दमनक नाम के फूल है, आप जानते होंगे, अभी तो मिलते नहीं वो फूल, लेकिन दमनक फूलों का उल्लेख जो है वो चैतन्य चरितामृत में कई बार हुआ है। वृंदावन की लीला में भी दमनक फूलों का वर्णन हुआ है। तो ये दमनक फूल चैतन्य महाप्रभु और सॉरी जगन्नाथ जी को बड़े प्रिय हैं, तो वो चुराने के लिए कृष्ण बलराम यहाँ पर आते हैं। तो कैसा उत्सव होता है, उस तिथि में रामकृष्ण उत्सव मूर्ति आती है और एक छोटे से बगीचे में वहां पर 12 दमनक के पेड़ उखाड़ के लोग रखते हैं और फिर वो 12 पेड़ विधिवत उनको अर्पण कर देते हैं और जगन्नाथ जी उसको लेकर भाग जाते हैं। ऐसी दमनक फूलों की चोरी लीला भी करते हैं। और रामानंद राय जो थे विशाखा के अवतार, जो चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षद थे, एक तरफ स्वरूप दामोदर एक तरफ रामानंद राय, तो रामानंद राय जी ने इस बगीचे को डेवलप किया है। जब उनके समय में भगवान के आनंद के लिए उन्होंने इसको बहुत डेवलप किया है। तो प्रद्युम्न मिश्रा नाम के चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्रा को आदेश दिया कि आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है तो आप रामानंद राय से मिलिए। तो रामानंद राय और प्रद्युम्न मिश्रा का संवाद इस जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में हुआ है और इतना सुंदर संवाद हुआ है कि प्रद्युम्न मिश्रा को पूरा जो प्रयोजन ज्ञान है वो रामानंद राय ने इस बगीचे में प्रद्युम्न मिश्रा को दिया, रामानंद राय ने। और यहाँ की आखिरी लीला जो है, लीला तो अनंत है जितनी किताब में ग्रंथों में लिखी गई है, उसमें आखिरी लीला यह है कि वैशाख पूर्णिमा एक बहुत सुंदर दिन है क्योंकि वैशाख पूर्णिमा में कृष्ण भगवान रास रचाते हैं। वैशाख पूर्णिमा में पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में बहुत ही मनोहर और दिव्य दृश्य होता है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु रात के समय जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में आते हैं और कृष्ण की अपनी चंद्र की बहुत शीतल शीतल सफेद रंग की आनंददायी किरणें यहाँ पर बिखरी हुई है। सुगंधी फूलों का सुगंध सब जगह छाया हुआ है, मंद मंद शीतल हवा चल रही है। ऐसे अवस्था में चैतन्य महाप्रभु बड़े भाव में आते हैं और कृष्ण के विरह में कृष्ण 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 करके पुकारते सब जंगलों में यहाँ पर घूमते हैं, विलियों को गले लगाते हैं, पेड़ों को गले लगाते हैं और कृष्ण कृष्ण कहाँ है पुकारते हैं। अचानक श्री कृष्ण का दर्शन चैतन्य महाप्रभु को इस बगीचे में होता है और वो कृष्ण का दर्शन होते ही भागते हैं उनके पीछे, उनको पकड़ने के लिए, गले लगाने के लिए। उतने में श्री कृष्ण भगवान गायब हो जाते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसा सुंदर दर्शन चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का इस बगीचे में हुआ है। संक्षेप में कहा जाए तो भगवान कृष्ण का यानी जगन्नाथ भगवान का आनंद स्थल ही है ये, और चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने यहाँ के समय काल में यहाँ पर आकर बहुत सारे विविध प्रकार के आनंदमय लीला की है। सबसे इंपॉर्टेंट लीला कौन सी है उनकी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु के इतने अनंत विविध पूर्ण लीला में सबसे इंपॉर्टेंट लीला जो है संकीर्तन लीला है, जो कृष्ण अवतार में उन्होंने रास लीला रचाई थी, वो केवल सारे ब्रजवासी जितने योग्य थे, भक्त थे, भगवान के वरिष्ठ भक्त थे, श्रेष्ठ भक्त थे, भगवान के ऐश्वर्य का उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था, माधुरी से संपृक्त थे, ऐसे सारे भक्तों में भी उन्होंने केवल गोपियों को ही चुनकर वो रास लीला का आनंद दिया। वो इतना प्राइवेट था कि ना नंद यशोदा थे उसके अंदर, ना ग्वालवाल थे, ना कोई गायें थी, ना बैल थे, कोई भैंस थी, कोई पक्षी थे, ना तोता था, कोई नहीं था उसके अंदर। यहां तक कि शिवजी और लक्ष्मी को भी प्रवेश नहीं मिला। शिवजी को प्रवेश मिला, फिर उनको गोपी बनकर आना पड़ा, फिर प्रवेश मिला कुछ समय के लिए। रास में नहीं मिला, रास के शुरुआत में उनको सखी बनकर चामर सेवा करने का अवसर मिला, फिर रास मंडल की रक्षा करने का सेवा मिला। लक्ष्मी जी को वो भी नहीं मिला। ऐसा अद्भुत अनोखा और सबसे अंतरंग गुह्य आनंद जो है वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन ये ऐसा कैप्सूल में डाल दिया उसको। रास लीला का जो अंतर्गत गुह्य आनंद है वो हरे कृष्ण महामंत्र में फिट करके उन्होंने कलयुग के सभी पात्रे अपात्रे ना देखिला ना देखिला स्थाने अस्थान, ना व्यक्ति की योग्यता देखी ना स्थान की योग्यता देखी, और सभी जन सामान्य के लिए उन्होंने एक समान रूप में उसको प्रस्तुत किया। और जहां जहां कीर्तन किया उन्होंने वहां पर अंतरंग और उत्कट प्रेम का प्रदर्शन किया। ये हम लोग कितना भी उसको कोशिश करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे ये कैसी प्रकार की कृपा है। एक युग में इतना कॉन्फिडेंशियल आनंद है, दूसरे युग में पब्लिक के लिए उपलब्ध है, वो ऐसी अनंत कृपा चैतन्य महाप्रभु ने की है। और यही अनंत जगहों में से जगन्नाथपुरी में वो जगह है जहां पर उन्होंने विविध प्रकार से इस संकीर्तन के रस को प्रचुर मात्रा में प्रकट किया है। इसके आगे आप जाएंगे चैतन्य क्या नाम है उसका वर्ड का चैतन्य मठ। अब इसका इतिहास ऐसा है कि हम जगन्नाथ की लीला से चैतन्य महाप्रभु लीला में आए, उसके बाद भी 400 साल बीत गए, तो ठाकुर भक्ति विनोद जी जो मैजिस्ट्रेट थे, इतने कुशल थे वो, इतने बुद्धिमान थे और परम संत थे वो, अपने संप्रदाय में पूरी संप्रदाय में एक ही गृहस्थ भक्त है वो, आदर्श भक्त। उनको 13 लड़के 13 पुत्र संतान प्राप्त हुई, उसमें 6 सन्यासी बने, उसमें से एक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, सिम्म गुरु नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो जब वो मजिस्ट्रेट थे तो 16 घंटा में जितना नॉर्मल मजिस्ट्रेट काम कर सकते थे वो काम वो 4 घंटे में करते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजिस्ट्रेट? वो एक न्यायाधीश थे, जज थे। वो इतने बुद्धिमान थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना वो भारतीयों को इतना नीचा लेखते थे, मतलब उनके लिए भारतीय लोग यानी सेकेंडरी, उनका पढ़ाई भी अलग से करते थे, अलग स्कूल में करते थे, उनके अधिकारियों के बच्चे जो थे वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, और भारतीयों को निकृष्ट दर्जे का अध्यापन की व्यवस्था उन्होंने करके रखा था जानबूझकर। आज भी उनका वही भाव है, वो भारतीयों को एशियन लोगों को ऐसा नौकर की तरह समझते हैं, आज भी उनके मन में वो अहम भाव है। तो आज भी आप इंग्लैंड में जाएंगे ना तो भारतीय व्यक्ति कितना भी वहां प्रगति करेगा तो सर्वोच्च स्थान अपने फील्ड में नहीं मिलता है उनको, उनको नंबर 2 या नंबर 3 का ही स्थान प्राप्त करना पड़ता है। ऐसे मेंटालिटी वाले जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके समय पर उनको सर्वोच्च पद दिया गया अपने फील्ड में। और फिर क्या किया, जब उन्होंने रिटायर होना चाहा तो उनको उन्होंने बोला कहाँ रहना है आपको, नवद्वीप में रहना है, ठीक है आप यहाँ से आपको ट्रांसफर करेंगे कृष्णानगर में जो नवद्वीप के पास है, और आपको कोई कष्ट की जरूरत भी नहीं है, आपके घर के गेट से ऑफिस के गेट तक अलग से रेलवे की लाइन डालेंगे, उसमें एक बोगी होगी, आप एक ही यात्री होंगे, एक मोटरमन होगा, बाकी सब सहायक होंगे रक्षक, और आप गेट से बाहर निकलेंगे तो सीधे आप ट्रेन में प्रवेश कर सकते हो, और सीधे आपके ऑफिस के बाहर उतरेंगे आप, और 4 घंटा काम करेंगे, 16 घंटे का काम 4 घंटे में करेंगे, और फिर लौट के अपने बंगले पे आएंगे गोद्रुम द्वीप में। इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी सुविधा उन्होंने आज तक किसी भारतीय को नहीं दी। उससे आप समझ सकते हैं कि इवन ऐहिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से कितने कुशल थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनकी एक समय पोस्टिंग जगन्नाथपुरी में थी, और जब वो यहां पर मैजिस्ट्रेट बनकर आए थे तो जगन्नाथ मंदिर का जो प्रशासन है उनका जिम्मा उनको मिला था। तो अपने जिम्मेदारी में उन्होंने अपने कार्यकाल में जगन्नाथ मंदिर के पूजा व्यवस्था को बहुत ही उन्होंने वृद्धंगत किया, बहुत ही तरह से उसको संवारा, और उन्होंने जगन्नाथ भगवान को बड़े हृदय से प्रार्थना की कि आपका कोई किरण मुझे एक पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए, ताकि चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन है प्रेमा भक्ति को विश्व भर में फैलाने का, हाँ पृथ्वी ते आचे सर्व नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बमर नाम, ये जो आपकी वाणी है उसको सत्य करने के लिए किस भक्त की सेना, ऐसे कोई सिंह जैसे भक्त की आवश्यकता है, ऐसे उन्होंने बहुत हृदय से प्रार्थना की थी। यथावकाश जबी, और साथ साथ में यहां पर बिमला देवी का मंदिर है जहां पर वो जगन्नाथ जी का जब नवकलेवर का समय होता है ना, तो वहां पर जाकर चीफ पुजारी रहते हैं, और वहां पर कुछ दिन रहने के बाद कभी एक दिन कभी दो दिन कभी तीन दिन बिमला देवी उस चीफ पुजारी को दर्शन देते हैं स्वप्न में, और बताते हैं कि आपके अगले ठाकुर जी का विग्रह का पेड़ जो है वो कहाँ रहेगा, उसका निर्देश करते हैं। तो वो बिमला देवी के मंदिर में भी इन्होंने मन्नत मांगी थी उनकी पत्नी ने और उन्होंने कि हमें एक ऐसा पुत्र हो जाए। तो जब पुत्र हुआ तो उसका नाम बिमला प्रसाद रखा, बिमला देवी के प्रसाद का भाव रखे हुए। तो उनका जन्म जो है वो फरवरी के आसपास हुआ था। देखो आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो जन्मदिन है ना वो हमेशा फरवरी में आता है, तिरुभाव दिन जो है दिसंबर जनवरी के शुरुआत में आता है। तो उनके जन्म के 6 महीने बाद रथ यात्रा का समय आया, जन्म के समय भी ये वहां के मजिस्ट्रेट थे, जन्म के बाद 6 महीने के बाद रथ यात्रा भी उनके निर्देश में उनके प्रशासन में हो रही थी। तो रथ जब निकला शुरू हुआ उस समय जब ये बालक विमला प्रसाद 6 महीने के थे, तो सीधे आके उनके दरवाजे में आके रुक गया। आप जानते हैं जगन्नाथ जी के रथ के बारे में कैसा होता है, लोग समझते हैं कि वो जगन्नाथ का रथ खींचते हैं, लेकिन आप मैंने मेरी आंखों से कई बार देखा है, आप अगर ऊपर के आश्रम में खड़े रहेंगे ना आपको लगेगा कि लोग इस तरफ खींच रहे हैं और रथ वहां जा रहा है, हमेशा देखा है मैंने, जहां रथ की मर्जी है वहां रथ जाते, जगन्नाथ की जहां मर्जी है वहां पर जाते हैं। पुजारी को पूछेंगे ना आप वो पांडी विजय में कि कैसा लगता है आपको, आप इतने लोग जगन्नाथ को खींचते हैं, वो कहते हैं हम लोग नहीं खींचते वो अपने आप चलते हैं। ये उनका कई बार का ये उनका वचन है, हम लोग अपना मेहनत करते हैं लेकिन हम ये पूरी तरह जानते हैं जब भी हम मेहनत कर रहे हैं उस समय भी हम जानते हैं कि हम इनको नहीं हिला रहे हैं, ये अपने मर्जी से हिल रहे हैं, वो नशे में है बिल्कुल भाव में है, और जब उनको झूलते हुए जाना है वैसे वो अपनी मर्जी से जाते हैं, और जब चाहे रुक भी जाते हैं फिर आदमी हम अपना पूरा बल लगाया पहले वैसे ही लगाया फिर भी वो नहीं हिलते, फिर रथ पे चढ़ते हैं वहां पर भी अचानक से गिर जाते हैं, और बाद में कुछ भी करो आप वो हिल नहीं सकते, फिर वो मुरली निकालते हैं और कालिया कालिया करके गाली देते हैं उसको, गाली बकते हैं वृंदावन की याद दिलाते हैं, फिर वो धीरे से उठ जाते हैं, फिर ऊपर डुलते हुए ऊपर चले जाते हैं। वैसे ही वो चलते भी हैं अपने मर्जी से, रथ में अपने मर्जी से रुक जाते हैं, जब मर्जी वापस चलते हैं, उनका जो प्लान है वो उनको उनकी इच्छा से पूरा होता है। तो रथ तो खींच रहे लेकिन अचानक जाके रुक जाता है सीधे ठाकुर भक्ति विनोद के घर के सामने, जो आज चैतन्य मठ के नाम से प्रसिद्ध है, वो ठाकुर भक्ति विनोद का घर है, उनका ऑफिशियल क्वार्टर्स है वो। तो जैसे रुक गया तो उनकी पत्नी भी बड़ी भक्त थी भगवान की, अपने 6 महीने के बालक को लेकर वो भाग के आई, बड़े अधिकारी है वो, तो उनके बालक को उन्होंने रथ में जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। इतना भाग्य देखो आप, कितनी महान विभूति है, हा? भगवान स्वयं उनको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, रुकते हैं और अपने चरणों में उनको स्वीकार करते हैं, चरणों का आश्रय देते हैं, उसी समय उनके गले की फूलों की माला बराबर उनके गले पे गिर जाती है। उस समय ठाकुर भक्ति विनोद देख रहे हैं तो उनको याद आता है कि मैंने भगवान से उनके एक किरण की मांग की थी पुत्र के रूप में, तो ये उनको अंदर अनुभूति हुई, उन्हें कहा ऐलान नहीं किया, हृदय के अंदर अनुभूति हुई कि मेरी इच्छा आज भगवान ने पूरी की, बस कन्विंस्ड। और सारे 13 संतान में से ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, सिंह गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर जी का जन्म स्थान है, निवास स्थान है, उनके पिताजी का भी निवास स्थान है, आज चैतन्य मठ के रूप में उस मंदिर में भगवान की सेवा होती है। तात्पर्य क्या है कि गृहस्थ लोगों को केवल भगवान की सेवा के लिए ही अपना जीवन चलाना चाहिए। हमारे ऊपर बहुत सारे कर्तव्य है, धनार्जन करना है, बच्चों को संभालना है, पढ़ाना लिखाना है, बाकी सब लॉजिस्टिक्स, घर का प्रशासन देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था तो देखनी है, लेकिन ये एक बाह्य कर्तव्य है। आंतरिक कर्तव्य सबके हृदय में ये होना चाहिए कि जैसे ब्रह्मचारी और सन्यासी वानप्रस्थ पूर्ण समय भगवान की सेवा में रहते हैं, वैसे हमें भी पूर्ण समय भगवान की सेवा में रहना चाहिए। क्योंकि भगवत चिंतन कोई सन्यास आश्रम का ठेका नहीं है कि वही 24 आवर्स कर सकते हैं। भगवत चिंतन ये सभी आश्रमों का ठेका है, सबको ये ठेका फ्री में दिया गया है। हमारे ऊपर डिपेंड है कि आपको अपना मन कहां लगाना है। ठाकुर भक्ति विनोद जी ऐसा नहीं कि वो अपने भौतिक दुनिया में फेल्योर थे, कहीं नौकरी नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ कोई धंधा करने में सफल नहीं हो रहे, ना पढ़े लिखे हैं, ना कुछ पढ़ाई है, ना लिखाई है, सब जगह फेल हो चुके हैं, फिर बने भक्त भगवान के, चलो अभी हरी हरी करते हैं, ऐसा नहीं है। जितना सम्मान उनका ब्रिटिशों ने किया उससे हम समझ सकते हैं कितने सक्सेसफुल थे वो, धन से, अधिकार से, प्रभाव से, शक्ति से, विद्या से, हर प्रकार से श्रेष्ठ थे वो, और उससे भी अधिक श्रेष्ठ वो भगवान के भक्त थे। पूरी रात भी वो गांव गांव जाकर प्रचार करते थे नामहट्ट में, रात को 8:30 बजे उठ जाते थे वो, 2 घंटा 3 घंटा विश्राम करने के बाद रात भर भजन लिखते थे, गांव गांव में जाकर प्रचार करते थे। तो कोई रुकावट नहीं है भगवान के भक्ति के लिए, कोई भौतिक रुकावट नहीं हो सकती है, ऐसे रूप गोस्वामी ने कहा है। तो हमको ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि देयर इज नो मटेरियल इंपेडिमेंट इन प्योर डिवोशनल सर्विस। अगर आपको बनना ही है भक्त तो आपको अगर 15 बच्चे भी होंगे तो भी आप श्रेष्ठ भजन कर सकते हो, क्योंकि भजन जो है वो चेतना की अवस्था है, वो शरीर की स्थिति और जॉब और पेशे और व्यवस्था की, अपना व्यवहार की अवस्था नहीं है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश, भगवान ने गुण कर्मों के अनुसार ये 4 आश्रम निर्माण किए हैं और हमें उसका उद्देश्य जानना चाहिए। चतुर्वर्ण मया सृष्टम, सृष्टम यानी निर्माण करने का उद्देश्य यह है कि किसी भी आश्रम का सहारा लेके हम आखिरी में हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान का धाम, भगवान की सेवा, चिरंतन सेवा प्राप्त करनी है। तो श्री कृष्ण भगवान की। इसके बाद आप सब लोग जगन्नाथ जी के मंदिर जाएंगे। जगन्नाथ जी का मंदिर आप जानते हैं, संक्षेप में उसका इतिहास ऐसा है कि जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए उस दारू ब्रह्म के माध्यम से, तो विश्वकर्मा ने उनके विग्रह बनाए और जब वो महावेदी पर पूर्णता प्रकट हो गए, यानी कि शुरुआत में लगा आधे हैं लेकिन नारद मुनि के कथन के अनुसार पता चला कि वो पूर्ण अवतार है, पूर्ण प्रकटीकरण है, प्रकट्य, तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने जहां पर पहले नील माधव रहा करते थे नीलाचल के ऊपर ये मंदिर बनाया जो आज आप देख रहे हो। और जब मंदिर बना तभी हमने तो 2 लाइन बता दिया, मंदिर बना दिया, आप मंदिर में देखिए 30 मंदिर है उसके अंदर, 30 मंदिर है और बहुत अद्भुत और स्थान भी है उसके अंदर। तो जो मंदिर बना है वो जितना ऊंचाई में आपको आज दिख रहा है, उसकी आज की ऊंचाई 214 फीट है, 65 मीटर है। हाँ, लेकिन एक रहस्य की बात मैं आपको बताता हूं। जैसे मंदिर पूरा हुआ तो नारद मुनि को तो पहले आदेश था कि ब्रह्मा जी को लाना है आपको, ब्रह्मा जी को कह दिया था लक्ष्मी देवी ने नीलमाधव के साथ में खड़े होकर कि जब भी इंद्रद्युम्न महाराज हमारे अगले स्वरूप को प्रकट करेंगे तो ब्रह्मा जी आपको परोहित करना है हमारी स्थापना करने के लिए। तो नारद मुनि को पूरा पता था ये ब्रह्मा जी के माध्यम से, तो वो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए पुरोहित के रूप में स्थापना करने के लिए चले ब्रह्मलोक में। तो किसी साधारण मानव को वहां पर ब्रह्मालोक में प्रवेश नहीं मिल सकता है मानव शरीर में, नारद में तो देव ऋषि है, उनको तो सब जगह जाने का वीजा है उनके पास। लेकिन वो जब जाने लगे तो ये इतने बड़े अच्छे भक्त थे भगवान के, उन्होंने नारद मुनि से निवेदन किया कि मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ क्या वहां पर, बोला चलो। तो नारद मुनि की कृपा से वो ब्रह्मालोक तक गए। ब्रह्मालोक की यात्रा उन्होंने जब की तो यहाँ पर कई सैकड़ों पीढ़ियां आगे गई, क्योंकि वहां पर तो जानते ना आप ब्रह्मा जी का एक क्षण, मतलब जब ब्रह्मा जी बछड़े चुरा कर एक क्षण वापस आए ना तो यहाँ पर 1 साल बीत गया था नीचे, तो एक क्षण वो पहुंचे नहीं वहां पर, बहुत समय लगा उनको पहुंचने के लिए। और उल्टा वह ब्रह्मालोक में जब पहुंचे नारद मुनि और इंद्रद्युम्न महाराज, तो ब्रह्मा जी ना कुछ मेडिटेशन में थे, तो उनके सेवक ने बताया कि 3 मिनट में आएंगे बाहर, यहाँ के 3 मिनट नहीं, ब्रह्मालोक के 3 मिनट, तो और कई सैकड़ों पीढ़ियां बीत गई, और 3 मिनट के बाद में कोई विशेष प्रार्थना ब्रह्मा जी भगवान को अर्पण कर रहे थे, वो समाप्त करके वो बाहर आए और क्षमा मांगी, मैं जरा भगवान के लिए विशेष प्रार्थना कर रहा था और चलिए हम चलेंगे। तो राजहंस पर बैठकर ये फिर नीचे की यात्रा शुरू किया उन्होंने, तो और कई सैकड़ों पीढ़ियां बीत गई। और जब पृथ्वी तल पर पहुंचे ना, तो कहते कि उतने सारे पीढ़ियों के बीच में कई तूफान आए, कई आंधी आई, कई सैंड स्टॉर्म्स आ गए, और ये मंदिर का ना बहुत सारा हिस्सा जो है वो रेती में ढक गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसको, ये जानते थे इस बात को कि ये मंदिर जो है ना उसका कई बड़ा हिस्सा जो है जमीन के नीचे है, मतलब उस पर्वत के नीचे है, तो उन्होंने खुदाई करने का आरंभ किया। तो उस समय बहुत भयंकर ऐसे डरावने आवाज आया उसके अंदर से, तो वो जो लॉर्ड जो भी कुछ था उस समय, इतना डर गया वो, उसने लिखित आदेश दिया कि इसके आगे कोई भी अधिकारी इसको छेड़ने का प्रयास नहीं करेगा क्योंकि उनको ना ये पता था कि इसके अंदर बहुत सारा द्रव्य है छुपा हुआ, बहुत धन संपत्ति है, उसके लालसा से वो लोग खुदाई करने थे अपने अधिकार में। लेकिन ऐसा भगवान ने उनको डरा दिया कि अगर कभी ब्रिटिश अधिकारी जगन्नाथ मंदिर में आकर अपना कोई, उन्होंने क्या कहते हैं उसको, गुस्ताखी करने का प्रयास नहीं किया। तो आज भी आपको जो मंदिर दिख रहा है वो दृश्य भाग जो है उसके नीचे भी भगवान का बहुत बड़ा संपत्ति है। एनीवेज, तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो इस प्रकार से कई विशेषताएं उनकी, क्या क्या बताएं, समय बहुत कम है। एनीवे, जो 15 मिनट में हो सकता है उतना बता देंगे आपको। जैसे मैंने कहा कि 30 मंदिर उसके अंदर है, और वर्ल्ड का सबसे सर्वोच्च किचन जो है वो उधर है, 754 चूल्हे हैं उसके अंदर, 600 चीफ कुक हैं, 300 असिस्टेंट कुक हैं, और बाकी कई सैकड़ों सेवक हैं उनके। और उनकी विशेष बात क्या है, अगर आपके परिवार की सेवा कद्दू काटने की है तो पीढ़ी चात पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी आपको कद्दू ही काटेंगे। उधर आप एक एरिया में जाएंगे तो उसमें ना नारियल, वो नारियल खाने का एक एरिया है, उसमें 50 लोग बैठे रहते हैं, वो नारियल ही निकालते रहते हैं, और वो हर रोज जिंदगी भर वही सेवा करते बस, और कुछ नहीं काम करते, क्योंकि कितना भोजन बनता है। एक सैंपल लेता हूं आपको, 7200 किलो का चावल बनता है रोज। अब इतना चावल के लिए उतनी सब्जी भी बनेगी ना, और हर में इधर कोकोनट का अंतर्भाव होता है, तो कितना कोकोनट लगेगा, दिन भर कोकोनट ही पीसते रहते हैं 8-10 घंटा। ऐसा बाकी लोगों का काम है, कोई लोग चावल ही भिगाते रहेंगे, और कुछ लोग किचन में ही रहेंगे, उनको सारी सामग्री तैयार मिलेगी और कुकिंग करते रहेंगे। 754 चूल्हे में 7-7 मटके होते हैं एक के ऊपर रखे हुए, और अद्भुत कार्य यह है कि सबसे ऊपर का मटका पहले पकता है, उसके बाद वाला उसके बाद में, लास्ट वाला नीचे वाला पकता है। ऐसे अद्भुत जगन्नाथ मंदिर में चमत्कार है। लक्ष्मी देवी इस किचन की प्रमुख, क्या कहते हैं उसको, हाँ क्या बोलते हैं हिंदी में, चीफ कुक, क्या बोलते हैं, हेड कुक, वो इंग्लिश में हो गया ना, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ ठीक है कोई बात नहीं, वो इंग्लिश में हो गया, मास्टर शेफ, कोई बात नहीं। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में विशेष जो लीला स्थली है वो जगमोहन मंडप है। चैतन्य महाप्रभु एक बार विरह में आए अनवसर काल में, जब मंदिर बंद था स्नान करने के बाद में, और गार्ड को पकड़ के पूछा कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण बताओ, तो गार्ड बहुत क्या कहते परेशान हो गया, क्योंकि अभी क्या उत्तर दे उनको, तो मंदिर सब बंद था। तो फिर वो वापस चले गए, फिर अगले दिन दोबारा आए, मंदिर के स्तंभ पे चढ़े भगवान, कहीं दर्शन नहीं हुआ, व्याकुल हो गए, फिर अलारनाथ चले गए। ऐसे कई बार गंभीरा से कहते हैं कि वो लॉक किया हुआ दरवाजे में जो चावी का होल है ना, होल, वो चावी के होल में से चैतन्य महाप्रभु निकले हैं बाहर, अपने शरीर को दोरी की तरह बनाकर, और हर एक जोड़ में कई फीट का अंतर रखते हुए कई मीटर लंबे जगन्नाथ जी के सामने मंदिर में पड़े हुए चैतन्य महाप्रभु मिले हैं। यू नो हिज बॉडी इज लाइक मेनी मीटर्स लॉन्ग, क्योंकि हर एक जोड़ के अंदर 6-6 इंच का जगह है, ऐसे अवस्था में वहां पर मिले। तो एक बार जब उन्होंने पहरेदार को पूछा तो वो उनको जगमोहन मंडप यानी मंदिर के सामने जो मंडप है ना वहां पर लेके गए उनको। तो वहां पर लेने के बाद में वक्रेश्वर पंडित आए, श्रीवास पंडित, अच्युतानंद, सत्यराज खान, नरहरी दास, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, सब लोग आए, और उन्होंने 7 ग्रुप बनाए और नृत्य शुरू किया जगमोहन मंडप में। सारे पूरीवासी देखने के लिए आए, राजा भी आए पूरी के अपने अधिकारियों के साथ, उनकी रानियां छत पर चढ़कर उन्हें नृत्य देखा, चैतन्य महापुरुष सातों ग्रुप में एक्सपांड हो गए, तो ऐसा मत समझना कि केवल रथ यात्रा में ही ये एक्सपांशन हुआ था। जहां जहां जितनी बार उन्होंने कीर्तन किया, जहां जहां ग्रुप बनाए, वहां हर जगह पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने रूप को विस्तारित किया है। बाद में उन्होंने कहा स्वरूप दामोदर को आप गाओ, उड़िया कविता गाओ, तो दामोदर जी ने उड़िया कविता गाया। जगमोहन पोड़ी मुंडयो, बोलो जगमोहन पोड़ी मुंडयो, अरे बोलो ना मुंडयो, जगमोहन पोड़ी मुंडहो। जैसे स्वरूप दामोदर ने गाना शुरू किया ना, उसका मतलब क्या बताए कि हे जगमोहन, हे जगन्नाथ जी, मेरा सिर जो है वो आपके चरणों में रहे हमेशा। मुंडे यानी सर, पोड़ी यानी पढ़ने दो। लेकिन जैसे स्वरूप दामोदर ने ये गाना शुरू किया ना, वैसे चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विवर हो गए कि वो बेहोश हो गए वहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर में, उनका सांस भी रुक गया। फिर धीरे से वो जग गए, फिर उन्होंने जोर से गर्जना की और उस गर्जना से पूरे 14 भुवन हिल गए। उनके शरीर में रोमांच हो गए, कदम्ब फूल की तरह उनका शरीर दिखने लगा। उसके बाद में सारे अति आनंद के विकार उनके शरीर में प्रकट हो गए, यहां तक कि उनके दांत भी उनके मुंह से गिरने लगे, ऐसे गिरने जैसे हो गए एक्सटेसी में। फिर चैतन्य महाप्रभु को यह अवस्था में देखकर नित्यानंद प्रभु ने संभाला उनको और धीरे 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 शांत किया, क्योंकि उनको पता था कि मंदिर के कई अधिकारी जो इसके योग्य नहीं है वो भी सब देख रहे हैं उसको। तो धीरे धीरे शांत किया उनको, सबने कहा कि महाप्रभु थक गए, अभी कीर्तन बंद करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन बंद किया। उसके बाद में उन्होंने समुद्र में जाकर स्नान किया और फिर वापस जगन्नाथ मंदिर में आए और उनको प्रसाद उन्होंने खिलाया। अभी वो प्रसाद का नाम था गोपाल वल्लभ भोग। ऐसे दिन में 25 भोग है, इसमें से एक नाम है गोपाल वल्लभ भोग। जैसे ही उनको दिया गया, उन्होंने खाया, तो उन्होंने वहां के लोगों को पूछा स्वाद कहां से आ रहा है, कहां से स्वाद आ रहा है बताओ, फ्रॉम वेयर द टेस्ट इज कमिंग। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने उन अधिकारियों को देखने अपने एक्सटेसी को कंट्रोल किया। फिर उन लोगों को समझा नहीं क्या जवाब देने उनको, तो चैतन्य महाप्रभु उस गोपाल वल्लभ भोग को खाकर स्वयं उत्तर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जिनका बहुत अधिक भाग्य है वही व्यक्ति जगन्नाथ महाप्रसाद के एक कण का परिचय उनको होता है। एक कण भी अगर किसी को मिलता है तो ये उनके अति भाग्य का लक्षण है। और फिर कहते हैं इसका अर्थ क्या होता है, तो महाप्रभु उत्तर देते हैं कि जगन्नाथ के होंठ जिस अन्न को छूते हैं वो उस अन्न को अमृत बना देते हैं। ब्रह्म शिव आदि भी देवताओं को इस प्रसाद का लाभ नहीं होता है। फिर महाप्रभु कहते हैं इस जगन्नाथ प्रसाद को फेला कहते हैं, ऐसे वो बता रहे हैं महाप्रभु जी, जो कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त कर चुके हैं और जिन्होंने अनंत जन्मों में अनंत पुण्य की राशि उत्पन्न करके रखी है, उन्हीं को इस जगन्नाथ के प्रसाद का लाभ होता है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। और जगन्नाथ के मंदिर में कल्प वृक्ष है, उसको अक्षय वट कहा गया है, कल्प वट कहा गया है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा ना उसका, अभी जाएंगे। इतनी शाखाएं हैं उनकी, इतनी शाखाएं हैं, पूरा आधा जगन्नाथ का मंदिर तो उसी ने घेर लिया हुआ है। उसके हर एक पत्ते पर नारायण भगवान का निवास है और उसी पत्ते पर उस बालक को मार्कंडेय मुनि ने देखा था, उसी पेड़ के पत्ते पर जो अपने ही पैर के अंगूठे को चूस रहा था प्रलय काल में, वही वट है वो। उसी के नीचे रोहिणी कुंड है, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने त्रेता युग में जब आए तो इस रोहिणी कुंड को शिला रखकर उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि इस रोहिणी कुंड की इतनी महिमा है कि इसका एक बूंद का स्पर्श होने पर भी पतित से पतित जीव भी चतुर्भुज विष्णु दूत का स्वरूप प्राप्त करता है और वैकुंठ चला जाता है। तो आज जो आपको रोहिणी कुंड दिखता है उसका लाक्षणिक स्वरूप है। मूल जो रोहिणी कुंड है वो ठीक कल्पवृक्ष के नीचे है और उसको पत्थर से बंद कर दिया गया। इसके बाद में उस पेड़ को वंशी वट, वरुण वट, देव नागर वट इसी नाम से भी जानते हैं। फिर उस मंदिर में उसके ही आगे वो वट के और आज के रोहिणी कुंड के बीच में एक नरसिंहदेव का मंदिर है। उस नरसिंहदेव के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु आए थे और उन्होंने वहां पर नरसिंह आरती गाई थी, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दाईने हिरण्यकशिपुर्वक्षः। ठीक है, नरसिंह भगवान की। मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी वहां पर जाके ही गाना है, अभी दर्शन होगा आपको। फिर मंदिर में कानफटा हनुमान है, जहां पर लक्ष्मी देवी और भगवान जब एकांत में बैठे थे उनको डिस्टर्ब हुआ समुद्र के लहरों का, उन्होंने हनुमान को आदेश दिया, हनुमान ने सारी ध्वनि लहरें अपने कान में इकट्ठा कर ली, उनका कान का पर्दा फट गया, इसलिए उनका नाम पड़ा कान फटा हनुमान। फिर वहां पर एक चारी चक्र हनुमान है, एक बार चक्र को भगवान ने कहा था हनुमान जी को बुलाओ, जब हनुमान जी आने लगे चक्र उनको रोकने लगे, तब भगवान को हनुमान ने पुकारा है, उस समय भगवान ने हनुमान जी के कंधे पर चार हाथ और निर्माण किए, एक्चुअली 6 हाथ निर्माण किए, उस चार हाथों में 4 चक्र दिए, दो हाथ हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, दो हाथ जोड़ के खड़े हैं, दो हाथ में जप कर रहे हैं हनुमान जी, तो उनका नाम है चारी चक्र हनुमान। जरूर दर्शन करना उनका, पुजारी को बोल के वस्त्र निकाल के जो हनुमान के कंधे पर 4 चक्र है उसका दर्शन करना। जब 4 चक्र का दर्शन किया तो चक्र जी हमारे जो है सुदर्शन चक्र जो है वो थोड़ा सा सहमा गए, क्या कहते हैं उसको, पहले एग्रेसिवली उनको रोक रहे थे फिर शांत हो गए। फिर जगन्नाथ जी ने उनको शाप दिया कि अभी जगन्नाथपुरी में आप हमेशा स्तंभ के रूप में रहेंगे, आपका चक्र का स्वरूप खो जाएंगे आप। तो फिर चक्र को गर्भारण तो हो गया था, पश्चाताप हो रहा था, तो उन्होंने माफी मांगी, तो भगवान ने कहा ठीक है कोई चिंता मत करना, चक्र के रूप में आप मेरे मंदिर के शिखर में रहोगे, और कलयुग में जितने भी विष्णु के मंदिर में रहे बनेंगे उस सबके मंदिर में आप चक्र के रूप में शिखर पर रहेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 जो भी आपको चक्र को देखेगा मंदिर के ऊपर आपको मेरा दर्शन करने का लाभ मिलेगा। ये 4 चक्र का हनुमान की लीला में उन्होंने बताया। फिर लक्ष्मी देवी का मंदिर है, फिर मंदिर के शिखर में नरसिंह भगवान और वामन देव का मंदिर है, फिर षष्ठी देवी, विमला देवी, भुवनेश्वरी देवी, ऐसे कई मंदिर हैं, कांचीमुख जो गणेश जी का मंदिर है, तो मंदिर में आपको पूरा दिन भी कम पड़ेगा। और पूरे मंदिर में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अनंत बार कीर्तन करके लोगों को आनंद दिया है। तो ऐसा जगन्नाथ जी का मंदिर है, आप जाइए और दर्शन कीजिए। जगन्नाथ जी का दर्शन जो है उसका विशेषता यह है कि जगन्नाथ जी की आंखें जो है ना वो कमल के पंखुड़ी की तरह नहीं है, कमल के पत्र की तरह है, गोल। कमल की पंखुड़ी ऐसे ही लंबी होती है और कमल के जो पत्र होते हैं ना वो गोल होते हैं, तो उनकी आंखें कमल के पत्र की तरह है, और उसमें आंख में लाल रंग का एक लाइन भी है। वो क्योंकि वो हमें अति प्रेम से वात्सल्य से निहार रहे हैं, हमको जाने वाले लोगों को, इसलिए उनके आंखों में वो लाली है अंदर से, तो उनके प्रेम का प्रतीक है। और नारद मुनि के पूछे हुए वरदान के अनुसार जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने मात्र से ही प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का दर्शन यानी नेत्रोत्सव और जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद, ये दोनों ग्रहण करने से इस जीवन में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। ये जगन्नाथपुरी मंदिर का और क्षेत्र का महात्म्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल।